संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने कल ये बात की थी कि समय सार में एकत्र विभक्त भगवान आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है। कुंदकुंद आचार्य देव कहते हैं कि मैं तुम्हें उस एकत्र विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। वास्तव में बात यह है कि इस जगत को दो भागों में बांटना है। एक भाग में अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक भाग में सारा जगत, इसी को वो विभक्त आत्मा कहते हैं। एकत्व विभक्त कहा ना, विभक्त माने पर से जुदा। तो पर माने क्या, मैं माने कौन, मैं पर से जुदा तत्व हूं। इन दोनों के बीच में सीमा रेखा खींचना वास्तव में इसी का नाम भेद विज्ञान है और इसी का नाम विभक्त आत्मा है, पर से भिन्न आत्मा है। आत्मा आत्मा तो सारे जगत के लोग कहते हैं, लेकिन उस आत्मा का अर्थ क्या, अपना कल्याण करो ये तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन उसमें अपना कल्याण का अर्थ क्या होता है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो, अपनी शारीरिक स्थिति सुधारो, अपनी सामाजिक स्थिति सुधारो, अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारो, इनको अपन माने क्या। इसलिए कहते हैं कि सारी दुनिया को दो भागों में विभक्त करना है, एक भाग में अपना आत्म राम और दूसरे भाग में सारा जगत। लोक में एक कहावत प्रचलित है कि एक ओर राम और एक ओर गांव, इन दोनों में से चुनाव करने को तेरे को मौका मिले तो तू किसे चुनेगा, तेरी दृष्टि में इन दोनों में से अधिक महत्व तो किसका है, राम का के गांव का। तो कहते जिसने आत्म राम को चुना उसका कल्याण होगा और जिसने गांव को चुना उसका कल्याण नहीं होगा। महाभारत की कथा से भी यही बात प्रकट होती है, वहां तो श्री कृष्ण को भगवान कहा है ना, और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और उनसे युद्ध में सहायता के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही पहुंचे तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक तरफ मैं अकेला निहत्था रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना हथियारों से लैस सारी सेना रहेगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि आप अकेले का हम क्या करेंगे, लड़ाई तो हथियारों से लड़ी जाती है, सैनिकों से लड़ी जाती है, सेना से लड़ी जाती है, इसलिए तो हमें तो हथियार सेना सहित हथियार ही चाहिए, आप करेंगे क्या, युद्ध के मैदान में भी व्याख्यान देंगे, उपदेश देंगे, तो उस उपदेश से हमारा क्या कल्याण होने वाला है। जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या कहना है तो अर्जुन ने कहा कि पहला अवसर दुर्योधन को मिला चुनने का और उसने चुन लिया, अब मेरे को तो चुनने का अवसर भी कहां है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि यदि मेरे को अवसर पहले मिलता तो मैं अकेले आपको ही चुनता निहत्थे। क्योंकि मेरी दृष्टि में ऐसा है कि जिसकी तरफ आप हैं उसकी तरफ निश्चित रूप से विजय है। पर गीता में ऐसा श्लोक था, यतो कृष्णा ततो जयः, जहां कृष्ण है वहां जीत है, वहां कृष्ण भगवान के रूप में है और यहां अपना आत्मा भगवान के रूप में है। तो मेरे जहां अपना आत्मा है वहां सुख शांति है, और जहां अपना आत्मा नहीं है, सारा जगत हो, चक्रवर्ती की संपदा हो, इंद्र जैसा वैभव हो, तो भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहां कहते हैं कि महाभारत का भले ही युद्ध का परिणाम कभी निकला हो, युद्ध के बाद में 18वें दिन निकला हो, लेकिन असली फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन दुर्योधन ने सेना को चुना था, श्री कृष्ण को छोड़ दिया था, और जिस दिन अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुना था और हथियारों सहित सेना को छोड़ दिया था। इससे सिद्ध होता है कि जगत में हथियार नहीं जीतते हैं, हथियार तो हिंसा के प्रतीक हैं, सेना तो युद्ध की प्रतीक है। भगवान वो अहिंसा के प्रतीक हैं, विजय हमेशा अध्यात्म और अहिंसा की ही होगी। और कहा भी यही जाता है कि श्री कृष्ण का क्या योगदान है महाभारत में। यदि हम बाहर से देखें तो उनकी क्या हैसियत है महाभारत के युद्ध में कि वो अर्जुन के सारथी थे। सारथी किसे कहते हैं? आज की भाषा में यदि सारथी का अर्थ हम करें तो एक ड्राइवर का नाम ही तो सारथी है। वो ड्राइवर किसी का ही क्यों ना हो, भले ही प्रधानमंत्री का ड्राइवर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर क्यों ना हो, है तो आखिर ड्राइवर ही। ऐसे ही श्री कृष्ण का स्थान महाभारत के युद्ध में सारथी का था, भले ही वह सारथी प्रधान सेनापति का ही क्यों ना हो, लेकिन सारथी तो सारथी ही है। युद्ध के विजय में सारथी का क्या स्थान हो सकता है? लेकिन महाभारत की विजय का संपूर्ण श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्री कृष्ण को। उसका कारण क्या है कि जब अर्जुन को युद्ध में व्यामोह हो गया और वो युद्ध करने से विरक्त हो गया, जब सेनापति का ही मन टूट जाएगा, जब वो ही लड़ना पसंद नहीं करेगा, तो जीत कैसे होगी? तो आखिर इस युद्ध के मैदान में भी गीता का उपदेश दिया गया, और उस गीता के उपदेश का ही ये प्रभाव माना जाता है कि महाभारत में पांडवों की विजय हुई। तो विजय तो आखिर उपदेश की ही हुई, हथियारों की नहीं। भले ही दुनिया में लोग कहें क्या कि तुम्हारे कोरे उपदेश से क्या होता है, भगवान आत्मा और कर्मों की जो लड़ाई है, भगवान आत्मा और कर्मों के बीच में जो महाभारत है, उस महाभारत में भी इस जीवात्मा का की विजय तभी होगी कि जब वो आत्मा को चुनेगा, आत्मा को समझेगा, और आत्मा को सुनना समझना ये देशना लब्धि से आरंभ होता है, यानी उपदेश से आरंभ होता है, बाद में आत्मा का अनुभव होता है। शास्त्रीय भाषा में बात करें तो पहले देशना लब्धि होती है और बाद में कर्ण लब्धि होती है, तब आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए उपदेश का कोई महत्व नहीं है, ये बात नहीं है। यहां कहते हैं, ये समझ लीजिए अध्यात्म का महाभारत है। इस अध्यात्म के महाभारत में सारी दुनिया को दो भागों में बांटना है। एक भाग में अपना वह आत्मा रखना है कि जिस आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, न केवल जानने का नाम बल्कि ए ही मैं हूं ऐसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, और जिसके ध्यान का नाम चारित्र है। उस आत्मा को इस सारे जगत में से खोज निकालना वो समय सार का काम है। इस समय सार की मूल विषय वस्तु अथवा प्रतिपादन का केंद्र बिंदु वह आत्मा ही है, वह आत्म स्वभाव ही है कि जिसके आश्रय से मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। तो आत्मा, आत्मा तो सारी दुनिया में सारी जगह कहते हैं, जीव जिसे बोलते हैं, जीव को ही आत्मा बोलते हैं ना, तो जीव किसे कहते हैं? तो कहते सब जीव ही तो हैं, मनुष्य, त्रिंच, नारकी, देव, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, हम तुम सब जीव ही तो हैं। तो जीव यानी आत्मा के रूप में इस जगत में जो कुछ हमें दिखाई देता है और सारी दुनिया जिन्हें मानती है वो देह के रूप में ही दिखाई देते हैं। यद्यपि ये बात सत्य है कि वो अकेली देह नहीं है, वो देह और आत्मा का एक मिक्सचर है। हाथी, घोड़े, मनुष्य, त्रिंच, चींटी, ये क्या है? ये अकेली देह तो नहीं है। यदि अकेली देह को जीव कहा जाता होता तो मुर्दे को भी जीव कहा जाता, लेकिन नहीं कहा जाता है। इसमें जीव है ये बात सत्य है, पर ये बात भी सत्य है कि ये जीव नहीं है। क्यों? कि ये तो रूप रसगंध स्पर्श वाला पदार्थ है और भगवान आत्मा में तो रूप रसगंध स्पर्श है ही नहीं। ये समय सार के जीवा जीवाधिकार में जो इसका पहला ही अधिकार है, वैसे इसमें 9 अधिकारों में वर्णन किया गया है। पहले अधिकार का नाम है जीवा जीवाधिकार, दूसरे अधिकार का नाम है कर्ता कर्म अधिकार, तीसरे अधिकार का नाम है पुण्य पाप अधिकार, चौथे अधिकार का नाम है आश्रव अधिकार, पांचवें अधिकार का नाम है संबर अधिकार, छठवें अधिकार का नाम है निर्जरा अधिकार, सातवें अधिकार का नाम है बंध अधिकार, आठवें अधिकार का नाम है मोक्ष अधिकार और 9वें अधिकार का नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। मूल समय सार में तो ये 9 अधिकार हैं। फिर बाद में टीकाकारों ने टीका लिखते वक्त और भी कोई आवश्यक चीजें समझी तो उनको भी इसमें जोड़ करके, किसी ने स्यादवाद अधिकार, किसी ने उपाय उपेय तत्व अधिकार, किसी ने साध साधक भाव अधिकार, ऐसे अधिकार और जोड़े हैं, लेकिन मूल समय सार में ये 9 अधिकार हैं। तो उसके इस जीवा जीवाधिकार में जो 49वीं गाथा है, ये जीवा जीवाधिकार को भी कहीं कहीं जीव अधिकार और अजीव अधिकार ऐसे 2 भागों में भी विभाजित किया है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो दोनों को मिलाकर जो 168 गाथा तक अधिकार है उसका नाम है जीवा जीवाधिकार। तो ये जीवा जीवाधिकार की जो 49वीं गाथा है उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भगवान आत्मा कैसा है कि अरस मरूप मगंधम अव्यक्तम। ये कैसा है भगवान आत्मा कि ना इसमें रस है, ना इसमें रूप है, ना इसमें गंध है, ना इसमें स्पर्श है। यानी रूप, रस और स्पर्श ये सब पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। और हमें इन आंखों से जो ये दिखाई दे रहा है, ये शरीर, रूप, रंग, आकार, प्रकार, ये सब पौद्गलिक है। इसलिए ये तो बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि जो हमें चमड़े की आंखों से दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है, वो तो देह है। इस देह में आत्मा है, लेकिन सारा जगत इसको ही जीव कहता है, इसको ही आत्मा मान के बैठा है और इस के समुदाय के कल्याण को ही अपना कल्याण मान के बैठा है। तो यहां समय सारे कहता है कि हमें आत्मा का कल्याण यदि करना है तो पहले हमें ये तो नक्की करना चाहिए कि वो आत्मा है, कौन है, कैसा, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसा कि कल कहा था कि यद्यपि जिन्हें हमें जो हमसे भिन्न पर पदार्थ हैं उनको इसी समय सार के अजीवाधिकार में अथवा जीवाजीवाधिकार में 29 भागों में बांटा है, जिन्हें प्रमुख दो भागों में बांटते हैं, एक वर्णादि एक राग आदि। वर्ण आदि माने रूप रस गंध स्पर्श आदि, राग आदि माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ आदि। तो इन भावों से आत्मा को भिन्न जानना है। तो हम जब वर्णादि कहते हैं तो उसमें खासकर पुद्गल आता है, रूप रस गंध स्पर्श वाला पदार्थ है। जब हम रागादि कहते हैं तो उसमें आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आते हैं। आचार्य ये कहना चाहते हैं कुंदकुंदाचार्य समय सार में कि ये हमारा आत्मा है, यद्यपि देह में रहता है फिर भी ये देह नहीं है। देह में रहना अलग बात है और देह होना अलग बात है। जैसे हम कहते हैं भगवान की मूर्ति मंदिर में है ना, कि भगवान मंदिर में रहते हैं लेकिन मंदिर भगवान नहीं है। हम अपने घर में रहते हैं लेकिन घर तो मैं नहीं हूं ना, घर जुदा है और मैं जुदा हूं। ऐसे ही यह आत्मा देह रूपी मंदिर में रहता है पर देह नहीं है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। यद्यपि इस आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वर्तमान दशा में, अज्ञान अवस्था में, संसार अवस्था में एक क्रोध मान माया लोभ के भाव आत्मा में ही होते हैं, पुद्गल में नहीं होते हैं, पत्थर में नहीं होते हैं, इस पुस्तक में नहीं होते हैं, आत्मा में ही होते हैं, फिर भी वो आत्मा नहीं है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी भिन्न है। तो ये देह तो एक प्रतिनिधि के रूप में है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि सारे पर पदार्थों से आत्मा को भिन्न जानना है। क्योंकि सारे पर पदार्थों में अत्यंत नजदीक का कोई पर पदार्थ है तो वो हमारा शरीर है। इसलिए जिसने यदि देह से भिन्नता जान ली तो उसके लिए फिर स्त्री पुत्रादि मकान जायदाद देश नगर से भिन्नता जानना कठिन नहीं होगा। और लोक में इनसे भिन्नता तो प्रायः अज्ञानी लोग भी जानते ही हैं। जरा सी प्रतिकूलता आई तो कहने लगता है कि देखो मुझे तो आज पता चला कि कोई किसी का नहीं है, मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने बच्चों के लिए कितना कितना किया, मैंने मोहल्ले वालों के लिए गांव वालों के लिए परिवार वालों के लिए उनकी कितनी सेवा की, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आखिर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो इस तरह से लौकिक प्रतिकूलता आने पर ये जुदे हैं और मैं जुदा हूं, ऐसा अज्ञानियों को भी भासित होने लगता है। न्यारा पूत पड़ोसी बराबर, यानी वो हमारे एक साथ था, धंधा व्यापार साथ था, हमारे आर्थिक स्थिति साथ में थी, कमाना खाना एक साथ था, तो वो हमारा था, हम हो गया था। और यदि ये अलग हो गया तो पड़ोसी बराबर हो गया। क्यों? तो इससे मालूम पड़ता है कि इस लौकिक प्रतिकूलता के काल में स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर ग्राम इनसे भिन्नता तो भासित कदाचित हो जाती है, तब भी देह से भिन्नता भासित नहीं होती है। अभी अपन जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं समय सार में, उसमें विभक्त की चर्चा कर रहे हैं, एकत्व की बात थोड़ी बाद में करेंगे। जब ये बात चलती है कि ये देह मैं नहीं हूं, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, तो फिर यही प्रश्न खड़ा होता है कि कि सारा जगत में तो ये बात कहा जाता है, देह में अहम बुद्धि की जाती है, और शास्त्रों में भी ये बात लिखी है। शास्त्र में भी ऐसा व्यवहार है कि देह के साथ में अपनत्व का व्यवहार है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऐसा हूं, इस तरह का व्यवहार ज्ञानी जन भी करते देखे जाते हैं। तो उसके लिए समय सार में ये कहा कि जब तक हम जैन दर्शन की प्रतिपादन करने की शैली को नहीं पहचानेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि जैन दर्शन में जितना भी वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है वो स्यादवाद शैली में है, वो नयों की भाषा में है, और ये नए वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। तो लौकिक लोग जिसको आत्मा कहते हैं जिनवाणी में, उसे व्यवहार से आत्मा कहते हैं, और जिनवाणी में ये कहते हैं कि वास्तव में यदि हम विचार करें तो लौकिक जनों का जो मानना है वो सत्य नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि व्यवहार नय का जो निरूपण है वो वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, प्रयोजन विशेष की दृष्टि से किया गया कथन है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इस व्यवहार नय दो प्रकार का होता है, जिसकी आठवीं गाथा में, नौवीं गाथा में, दसवीं गाथा में, ग्यारहवीं गाथा में, इन गाथाओं में इसकी चर्चा विस्तार से की। आठवीं से लेकर बारहवीं गाथा तक समय सार में इन नयों की चर्चा की, और वो ये कहते हैं कि वो व्यवहार नय का जो कथन है वो अभूतार्थ है। ग्यारहवीं गाथा है व्यवहारा भूयत्तो भूयत्तो देश दो दु शुद्ध नयो, कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और जो शुद्ध नय है माने निश्चय नय है वो भूतार्थ है। भूतार्थ मस्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवई जीवो, और जो भूतार्थ नय का आश्रय करते हैं वे जीव सम्यक दृष्टि है। तो देखिए व्यवहार के दो काम हैं, दो काम है माने क्या, हमें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझना है, जिनसे आत्मा जुदा है एक व्यवहार नय उनसे आत्मा को जुदा नहीं है ऐसा कहता है, और एक नय जो आत्मा को कहता है एकत्व माने अखंड है, तो दूसरा जो व्यवहार नय है वो आत्मा को उसमें ही भेद डालने की बात करता है। तो इस तरह जो वस्तु की स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उसके विरुद्ध व्यवहार नय कथन करता है। क्यों करता है, देखो पर से संयोग की चर्चा जिस नय में की जाती है उस नय का नाम है असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत माने क्यों, असद्भूत नाम क्यों रखा उसका, कहते वस्तु स्थिति जैसी नहीं है, सद्भूत माने होना और असद्भूत माने नहीं होना, माने देह और आत्मा एक नहीं है, और देह और आत्मा को एक कहना, जो एक कहता हो, व्यवहार माने कहना, तो जो देह और आत्मा को एक कहता हो वो असद्भूत व्यवहार नय हुआ। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसे नगर देश गांव ये अपने नहीं है, और जो नय इन्हें अपना कहता हो तो उसे भी हम कहेंगे वो असद्भूत व्यवहार नय है। इसके भी दो भेद किए हैं, एक उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और एक अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये कैसे किए, जैसा कि कल कहा था कि जिस देह का हमारा संबंध है जन्म से लेकर मृत्यु तक है, तो ऐसे संबंध को नजदीक का संबंध कहते हैं, और स्त्री पुत्रादि का जो संबंध है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का नहीं है। ये तो नक्की है ना कि स्त्री हमारे जीवन में बहुत बाद में आई है 20-25 वर्ष की उम्र में, और पुत्रादि उसके भी बाद में आए हैं, और हो जाएगा कि हम पहले ही चले जाएंगे और वे इस जगत में रहेंगे, तो जन्म से लेके मरण तक का संबंध तो नहीं रहा ना कोमल से नहीं। तो जिसका जन्म से लेके मरण तक का संबंध नहीं है उसको बोलते हैं औपचरित संबंध, उपचरित। और जिसके साथ में जन्म से लेके मरण तक का संबंध है उसे बोलते हैं अनुपचरित संबंध। देखो हम इसे व्यवहार में और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिसके साथ हमें औपचारिकता निभानी पड़े वे हैं उपचरित, और जिसके साथ हमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़े वे हैं अनुपचरित। देखे तुम्हें कोई आदमी हमारे दोस्त है, मित्र है, वो हमारे घर आता है तो हमें कहना पड़ता ना आइए साहब बैठिए चाय पानी पियेंगे। अपन जानते हैं कि भाई अरे रात्रि में पानी भी नहीं पीते हैं तो चाय क्या पियेंगे, लेकिन अपन को ऐसा लगता है ना कि नहीं कहेंगे तो ये क्या कहेंगे कि साहब दूध चलेगा। 25 दफे अपन उनके घर गए और कभी उन्होंने दूध लिया नहीं, तो भी नहीं पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पूछना पड़ता। इसको बोलते उपचार का निभाना। और सरल करें, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और कोई भी यदि आदमी बाहर का आता है तो हम जल्दी से कुर्ता पहन लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, क्यों? हम उसके साथ औपचारिकता निभाते हैं। यहां तक कि हमारा यदि हम अगले चड्डी पहने ही बैठे हों और हमारा बेटा भी आ जाए तो कम से कम एक चदरा ओढ़ लेते हैं। जिसके साथ हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, लेकिन शरीर के साथ तो ऐसी नहीं निभानी पड़ती है। क्या अपने शरीर से भी कभी पूछना पड़ता है कि एक गिलास पानी लोगे, एक कप चाय लोगे क्या? जैसे दूसरों से पूछना पड़ता है ऐसा अपने अपने देह से तो नहीं पूछना पड़ता है, उसके साथ तो कोई औपचारिकता तो नहीं निभानी पड़ती है ना। तो जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े वो उपचरित व्यवहार है, और जिसके साथ कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़े वो अनुपचरित व्यवहार है। व्यवस्था तो अपने देह की भी करते हैं क्या नहीं सुरेंद्र कुमार जी? चाय पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था यदि हम अपने बाल बच्चों की करते हैं, रिश्तेदारों की करते हैं, दोस्तों की करते हैं, तो अपने लिए भी तो करते हैं ना, लेकिन अपने साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है और उनके साथ निभानी पड़ती है। तो जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उनके साथ के संबंध को उपचरित संबंध कहते हैं, और जिन पर पदार्थों के साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े ऐसा व्यवहार हो कि जैसे ये मैं ही हूं, देखो है तो पर, इसलिए तो उसका नाम है असद्भूत। और माना कैसे? जैसे मैं ही हूं, इसलिए उसका नाम है अनुपचरित। तो इस तरह के इन पर पदार्थों को भी हमने दो भागों में बांट दिया। पहले हमने सारी दुनिया को दो भागों में बांटा था कि एक भाग में रखा अपना आत्मा और दूसरे भाग में रखा सारे पर पदार्थ और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले अपने आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वे भी पर की तरफ रखे, अपनी तरफ नहीं रखे। दुनिया को दो भागों में बांटा। अब जिन्हें हमने पर के में रखा उनको भी हमने फिर दो भागों में बांटा, एक को कहा कि उपचरित और दूसरे को कहा अनुपचरित। एक को कहा वो जिनके साथ हमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है, और एक के साथ उनको रखा कि जिनके साथ हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, अथवा जिनका जन्म से लेकर मरण तक संबंध है उसको हमने कहा अनुपचरित, और जिसका बीच में हुआ और बीच में ही छूट जाएगा उसको कहा हमने उपचरित। तो इस तरह उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश और गांव ये सब मेरे हैं, ये मैं हूं, इनका कर्ता भोक्ता मैं हूं, ऐसा ये नए कहता है और ऐसा ही सारी दुनिया मानती है। तो ये नए दुनिया की मान्यता को का प्रतिनिधित्व करने वाले नए हैं। जिनवाणी में भी दुनिया ऐसी मानती है इस रूप में इनको स्वीकार कर लिया है। और चूंकि हमें दुनिया में जब तक हैं, दुनिया में जब तक रहना है, तब तक सारा व्यवहार दुनिया से निभाना पड़ेगा। ये बात हमने जान ली कि इस बात में कोई दम नहीं है कि शरीर मैं हूं, शरीर तो मेरे से जुदा है। ये जान लिया फिर भी यदि कोई आदमी कहे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो आप कहने नहीं, आज मुझे बुखार आ गया। ऐसा थोड़ी कहेंगे मेरे शरीर को बुखार आ गया। जानते हैं कि मेरे शरीर को बुखार आया है। ज्ञानी जन जानते ऐसा है कि मेरे को बुखार नहीं आया है, बुखार शरीर को आया है। लेकिन लोक में चूंकि व्यवहार अज्ञानियों से करना है, इसलिए उन्हें भाषा ऐसी ही बोलनी पड़ेगी कि मुझे बुखार आ गया है। अपने घर में है ना, अपने घरों में भाषा बच्चों की चलती है। कहते हैं कि अम्मा को बुलाना, तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसका क्या अर्थ होता है, तुम्हारी अम्मा को या बच्चे की अम्मा को? कैसा क्या बात करते हो, हमारी अम्मा का तो स्वर्गवास ही हो गया है, वो है ही कहां। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कहते पत्नी को बुलाना? क्योंकि घर में भाषा बच्चों की चलती है। हम बोलेंगे तो बच्चों की तरफ से, बच्चे जिसको मां कहते हैं, अम्मा कह मम्मी कहते हैं, उसे हम मम्मी बोलेंगे, मम्मी को बुलाना। बच्चे जिसे दादा कहते हैं हमारे पिताजी को, तो हम उससे ये कहेंगे दादा को बुलाना, ये नहीं कहेंगे पिताजी को बुलाना। जो बच्चों की तरफ से जो रिश्तेदारी है, वो सारे घर में भाषा उनकी ही चलती है। लेकिन अंदर में हम जानते हैं कि हमने इसे मम्मी कहा है, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये बच्चे की मम्मी है। ऐसे ही ज्ञानी जन भी भाषा अज्ञानियों की ही बोलते हैं। ये समझ लो कि वो ज्ञानियों की भी भाषा हो गई, जैसे बड़ों की भी वही भाषा हो गई कि बच्चे की तरफ से जो सारे घर के रिश्तों को, मान लो वो बच्चे का मामा आया तो हम बोले मामा को बुलाना, तो वो हमारा मामा है, हमारा तो साला है, हम भी उसे मामा बोलेंगे। बच्चे का फूफा आया तो हम भी उसे फूफा बोलेंगे, बहनों जी आया तो बहनों ही बोलेंगे, ना करते कि नहीं करते। माने सारे भाषा हमारी घर की वो बालकों की बन जाती है, बस भाषा ही रहती है लेकिन घर में और कुछ नहीं चलती है उनकी। मोटरसाइकिल कार लाना हो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक दिन की सब्जी भी लाना हो तो बच्चों के कहने के हिसाब से नहीं लाई जाती है। क्यों भाई साहब, किसकी चलती है? मां बाप की चलती है ना, तो चलती है मां बाप की। भाव होता है मां बाप का और भाषा होती है बच्चों की। ऐसे ही जिनवाणी में भी भाव होता है ज्ञानियों का और भाषा होती है अज्ञानियों की। वो जो व्यवहार नय की भाषा है ना, वो एक तरीके से हम विचार करें तो अज्ञानियों की भाषा है, अज्ञानियों की तरफ से की हुई भाषा है। जब हमें कहते हैं कि शरीर मैं हूं, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, तो अंदर में तो ये जानते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन बाहर से भाषा ऐसी ही बोलती है। आजकल कुछ अध्यात्म के जोम में कुछ लोग ऐसी भाषा बोलने लग गए कि मेरे को क्या हुआ, ये तो शरीर को कैंसर हुआ है, ये हार्ट अटैक तो मेरे शरीर में हुआ है, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये अध्यात्मिक कहलाने के लिए ऐसी भाषा बोलना, तो तुम जिनवाणी को नहीं जानते हो। क्यों? कि जिनवाणी में तो व्यवहार नय की भाषा बोलने का तुम्हारा अधिकार है, कर्तव्य है। भाषा को विकृत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो तो कहते हैं कि अंदर में ये बात तुम समझ लो कि ये जो कहा जा रहा है ये वास्तविक स्थिति नहीं है, वास्तविक स्थिति अंदर में कुछ और है। इसीलिए तो इसका नाम रखा है ना असद्भूत। असद्भूत व्यवहार नय दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? कि एक स्त्री पुत्र मकान जायदाद इनको अपना कहने वाला। देखो इसमें भी थोड़ा सा भेद डालना चाहता हूं मैं कि हम किसी को भी कहें सारी दुनिया में, तो कहते नहीं, हमारे पुण्य पाप के उदय से जितने भी संयोग हमें मिले हैं, जिन्हें हमने कल नो कर्म कहा था ना, उस सारी दुनिया में से उतनी चीजों को लेना। हम मुफ्त में कहें सुमेर पर्वत हमारा है कि हमारा नहीं है, तो किसने सुमेर पर्वत को अपना माना है? सुमेर पर्वत कहां है, किसी ने देखा है? जब तक देखा ही जाना नहीं है तो कोई मानेगा क्या, बोलो? तो व्यर्थ की कल्पना से क्या बात है? सिद्धांत रूप से समझाएंगे तो वो बात भी कह देंगे, धर्म द्रव्य भी तेरा नहीं है, अधर्म द्रव्य भी तेरा नहीं है। लेकिन मूल बात तो यह है कि जिन चीजों को हमने अपना माना है वो मेरी नहीं है। समस्या ये है, ये पड़ोसी का मकान आपका नहीं है अजित कुमार जी, ये समझाने में क्या दम है? क्योंकि ये तो आप मानते ही हैं कि पड़ोसी का नहीं है मेरा, वो उसका है, वो मेरा तो ये है। समझाना तो ये है कि जिस मकान को आप अपना मानते हैं वो भी आपका नहीं है। कोमलचंद जी, आपका शरीर मेरा नहीं है, इसमें क्या दम है? मैं कब मानता हूं कोमलचंद जी का शरीर मेरा है? लेकिन जिस शरीर को मैंने मेरा मान रखा है वो भी मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से जो सामग्री हमें उपलब्ध है, संयोग हमें उपलब्ध हैं, उन संयोगों में दो भेद किए हमने। और एक तो वो हमारे पुण्य के उदय से मिले, लेकिन वो हमारे जन्म से लेकर मरण तक के साथ ही नहीं है, और जिनके साथ हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, ख्याल में है ना? एक तो वो, उनको हम कहते हैं उपचरित, और एक वो जो देह जिसके साथ कोई औपचारिकता नहीं निभानी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ रहेगा। तो इस तरह के दो भेद हो गए अनुपचरित। तो एक हो गया उपचरित असद्भूत व्यवहार नये, और एक हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नये। तो ये व्यवहार नये जिन जिनको अपना कहता है, चाहे ऐसा बोलो कि ये व्यवहार नये जिन जिनको अपना कहता है, और चाहे ऐसा बोलो कि दुनिया जिनको अपना कहती है, चाहे ऐसा बोलो कि अज्ञानी लोग जिसको अपना कहते हैं। वो वास्तव में अपने नहीं है, वो मैं नहीं हूं, मैं उनसे जुदा तत्व हूं। वो मेरे नहीं है, मैं उनसे जुदा तत्व हूं। इसका ज्ञान कराना ये जीवा जीवाधिकार में है। जीवा जीवाधिकार की मूल विषय वस्तु क्या है? जीवा जीवाधिकार में क्या समझाना चाहते हैं? 68 गाथाओं तो जीवा जीवाधिकार है। यदि हमें समझ में ये बात आ जाए, इतनी बात आ जाए कौन कि शरीर से लेकर सारा हिंदुस्तान, देखिए कैसी विचित्र बात है, हमारी भाषा कितनी कमजोर है अन्ना जी। क्या हम बोलते हिंदुस्तान हमारा है, फिर कहते राजस्थान हमारा है, फिर कहते जयपुर हमारा है, फिर कहते बापूनगर हमारा है, फिर टोडमल स्मारक भवन हमारा है, फिर एक कहते एक कमरा हमारा है। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? अब सब में देह हमारा है, शरीर हमारा है, तो इन सब में एक ही शब्द का हमने प्रयोग किया कि हमारा है। लेकिन इनका वजन बराबर है, सबका एक ही अर्थ है। जब हम हिंदुस्तान हमारा है कहते हैं तो राजस्थान हमारा है, इन दोनों में वजन में फर्क नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार ये निर्णय करे कि हम हिंदुस्तान में अमेरिका के सहयोग से 5 बड़े बड़े कारखाने डालेंगे जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की बहुत तरक्की होगी, तो हम एकदम कहते हैं कि एक राजस्थान में होना, क्योंकि आपका हिंदुस्तान है ना, और आपके हिंदुस्तान में हम 5 दे रहे हैं ना। कि नहीं भाई साहब 2, लेकिन हमारे राजस्थान में 1 जरूर होना। तो हमारे राजस्थान हमारा है, इसमें वजन ज्यादा है ना। हिंदुस्तान के 5 हमें स्वीकार नहीं है, 1 राजस्थान में चाहिए। चलो राजस्थान को 1 दिया, अब तो खुश हो? तो कह दी कह नहीं साहब जयपुर में होना, नहीं तुम उदयपुर में लगा दो, जोधपुर में लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? तो फिर पूरा राजस्थान तुम्हारा था ना, लेकिन उससे जयपुर ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा है कि नहीं है, वजन ज्यादा इसमें जयपुर में हमारा है कि नहीं है, शब्द तो हमारे पास है कि ये हमारा है। और उसके भी भीतर हम यदि जाएंगे कि हां साहब एक बहुत बढ़िया पार्क बनाना है जयपुर में, कि हमारा बापू नगर में बनना चाहिए था, नहीं तो तुम वहां बना दो विश्वकर्मा के पास, तो हम कब कहां जाने वाले हैं। तो पूरे जयपुर की अपेक्षा बापू नगर हमारा कुछ ज्यादा नजदीक का है कि नहीं, लेकिन भाषा में कुछ नहीं है हमारे पास, एक ही शब्द है हमारा। और इसके भेद में भी हम अंदर अंदर जाते हैं कि साहब बापू नगर तो तुम्हारा पक्का कि हमारा तो स्मारक है साहब, क्यों तो स्मारक तो पक्का कहा, वो एक कमरा है हमारा पास, एक कमरा बस वो ही है, क्यों संत कुमार जी पूरा स्मारक आपका है कि वो एक कमरा जिसमें आप रहते हैं, तो कमरा तो पक्का, उस कमरे में भी दो पलंग पड़े हैं, तो कहते वो पत्नी का है और ये मेरा है, बोलो। तो एक कहने को भाषा में तो ऐसा है कि सब हमारा हमारा हमारा, लेकिन इसमें वजन का कितना फर्क है, लेकिन क्या करे व्यवहार के पास इतनी समर्थ भाषा नहीं है कि इनके भेद को वो व्यक्त कर सके, और अध्यात्म में इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको तो सब हमसे जुदा है ये जानना है ना, चाहे वो हिंदुस्तान में वजन कितना ही कम हो और बापू नगर में वजन ज्यादा हो, लेकिन हमको ये थोड़ी नक्की करना है कि बापू नगर को तो अपना रखना हो और हिंदुस्तान को पराया कहना हो, हमको तो ये कहना है कि जो ये नए है उपचय तसदूत व्यवहार नए, जो इनको अपना कहता है वो अभूतार्थ है, माने असत्यार्थ है, वो बात में कोई दम नहीं है, वो बात सच्ची नहीं है, क्योंकि मैं चला जाऊंगा और हिंदुस्तान से लेके बापू नगर से टोडा मल स्मारक भवन सब यही रह जाएगा, क्यों जाना पड़ेगा ना एक दिन कोमल चंद जी, कब जाना पड़ेगा, मरेंगे तब, अरे मरेंगे तब तो वो दूसरे नंबर का देह वाला आएगा तब की बात है, ये हिंदुस्तान से लेकर बापू नगर तक तो बिना मरे ही छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है, हम चले जाएं अमेरिका और वहीं बस जाएं, क्यों इसी भ्रम में छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, और वहां की नागरिकता ले लें तो क्या हो जाएगा कि फिर हमको हिंदुस्तान में आएंगे तो फिर वहां से वीजा लेके आना पड़ेगा, बिना वीजा के कोई हमें घुसने नहीं देगा, हिंदुस्तान हमारा नहीं रहेगा, इसी भ्रम में छूट सकता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है उपचरित, उपचरित माने हमने बुद्धि से स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, ये माना हुआ है नहीं, इसका नाम है व्यवहार। तो ये समय सारे कहता है कि ये व्यवहार न अभूतार्थ है, अभूतार्थ है माने जिसको जे अपना कहता है वो अपने नहीं है, वो तू नहीं है, वो तेरे नहीं है, तू उनका कर्ता भोक्ता नहीं, वो तू नहीं है वो तेरे नहीं है, ये जीवा जीवाधिकार में बताया, और तू उनका कर्ता भोक्ता नहीं है ये कर्ता कर्म अधिकार में बताया, इस तरह एक से लेकर 146वीं गाथा तक की विषय वस्तु है। समय सार में क्या है, आखिर समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसकी चर्चा चल रही है, ये मेरे नहीं है। अब इन पे हम गंभीरता से विचार करते हैं कि कहें, क्योंकि इनमें हमने अपना जो है तो नहीं अपने, और इन्हें हमने अपना मान रखा है, और अब इनमें जो भी परिवर्तन होता है वो हमारा किया तो रंच मात्र होता नहीं है, और हमने मान लिया कि ये हमारा है, हमारे मन के अनुकूल चलता नहीं है, तो फिर हमें अनंत दुख होता है। हमारे अनंत दुख का कारण ये है कि जो हमारा नहीं है उसे हमने अपना मान लिया है। अब दूसरी बात, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है। अनुपचरित माने वही शरीर, शरीर को आत्मा कहना, शरीर और आत्मा को एक मानना, शरीर और आत्मा, शरीर को आत्मा का कहना, उनमें चाहे एकत्व का संबंध स्थापित करें, चाहे ममत्व का संबंध स्थापित करें, यानी स्वस्वामी संबंध स्थापित करें कि मैं स्वामी हूं, ये मेरी संपत्ति है। इसको बोलते स्वस्वामी संबंध, इसको बोलते स्वामित्व बुद्धि, और ये मैं हूं इसको बोलते एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ये मैं हूं। तो ये जो दो बुद्धियां हैं ये अज्ञान है। यानी सारे पर पदार्थों में से अकेले तो अपन ने अभी जो असद्भूत व्यवहार नहीं की बात की, लेकिन अपनी मूल मुद्दे में तो दो बातें थी। कौन सी थी दो बातें? पहली बात तो एक वरुणादि और दूसरी थी रागादि। वरुणादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज भाव माने अपना भगवान आत्मा, उनको वरुणादि से जुदा जानना है और रागादि से जुदा जानना है। तो अब कहते हैं कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं ना, वो भी मैं नहीं हूं, वो भी मेरे नहीं है, उनका कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूं, ऐसा मानना वो सद्भूत व्यवहार का निषेध है। जिनवाणी में इन्हें अपना सद्भूत व्यवहार नहीं से कहा। सद्भूत क्या होता भाई साहब? कि ये वास्तव में आत्मा में है, ये ऐसे नहीं है जैसे स्त्री पुत्र आदि आत्मा में है ही नहीं और उन्हें अपना कह दिया है। ख्याल में है ना? जैसे कि अपन अपने मकान को अपना कहें और पड़ोसी के मकान को अपना कहें, तो एक तो दुनिया की दृष्टि से वास्तविक है और एक औपचारिक है। हम आपके पास जाते हैं आपके घर, तो मैं पूछते हूं भाई साहब आपका घर? अरे साहब आपका ही है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसा इस बात में, और अपना जो जिसमें अपन ने खरीदा है 10-20 लाख रुपए लगाए हैं उसमें फर्क है ना। ऐसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम तो आत्मा में पैदा होते हैं, इसलिए वो सद्भूत हैं, और स्त्री पुत्रादि जो हैं आत्मा में पैदा नहीं होते, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है, वो तो बाहर से माना हुआ संबंध है। ये पंडित ने साफ फेरे पार दिए तो पत्नी अपनी होगी, स्त्री होगी अपनी, क्यों? वो तो हमने माना हुआ संबंध है, वो वास्तविक संबंध नहीं है। लेकिन राग द्वेष मोह का संबंध पद्मचंद जी ऐसा नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में पैदा हुए हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सद्भूत हैं। और उपचरित भी बोलते हैं उसे, क्यों? कि वे आत्मा को दुख देने वाले हैं, आत्मा को सुख देने वाले नहीं हैं। जो चीज अपन को दुख देने वाली हो उसको उपचार से ही अपनी कही जा सकती, उसे वास्तविक अपनी नहीं कही जाती। क्यों? इसलिए राग द्वेष मोह कौन से हैं? उपचरित, सद्भूत और व्यवहार माने, व्यवहार माने कहना, और नए माने ज्ञान का अंश। एक ज्ञान ऐसा जानता है कि सारी दुनिया में राग द्वेष मोह आत्मा के कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मा में पैदा होते हैं। क्या? अब आत्मा में पैदा हुए तो वे आत्मा हो गए क्या? बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आचार्यों ने कि जल में काई पैदा होती है। काई तो समझते ना, शैवाल होता ना, जो पानी होता है तालाब वगैरह में, तो ऊपर वो हरी हरी घास सी पैदा हो जाती है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर फैल जाती है, उसे काई बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। तो वो कहां पैदा होती? बोलो, जमीन पे पैदा होती है, यहां पनपेगी? वो काई जल में ही पैदा होती है, लेकिन फिर भी जल नहीं है, काई जुदी है और जल जुदा है। तो जो जो जिसमें पैदा हो वो उसका ही हो, वो ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। काई जल में पैदा होकर के भी जल नहीं है, जैसे जल का मैल है, ऐसे ही राग द्वेष मोह के परिणाम आत्मा में पैदा होकर के भी आत्मा नहीं है, आत्मा के मैल हैं, आत्मा का विकार है, आत्मा की विकृति है, वो छोड़ देने लायक है। देखो भाई साहब, आंख में अपना कीचड़ पैदा होता कि नहीं? आंख में कीचड़ पैदा होता कि नहीं होता? तो वो आंख है क्या कि वो रखने लायक है कि निकाल देने लायक है? नाक में भी कुछ पैदा होता है, अपनी इंद्रिया में कुछ ना कुछ माल का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता? ये नाक में जो नाक पैदा होती है अंदर, वो नाक में ही पैदा हुई कि बाहर से आई है? लेकिन वो निकाल देने लायक है कि रखने लायक है? निकाल देने लायक है। और लोक में जो निकाल देने लायक होता है उसे अपना नहीं कहा जाता, उसे अपना कहना उपचार है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारी नाक में है तो हमें अपनी कहनी पड़ती है, लेकिन वो नाक में से निकल के यहां जमीन पर पड़ जाए और फिर कोई पूछे कि ये नाक किसकी है तो कौन बताने वाला है मेरी? कौन स्वीकार करने वाला है कि मेरी है? विचार करो। कोई देख ले कि इसने छिनकी है और स्वीकार करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन दिल से वो कभी उसे अपनी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तो राग देश मैल भी आत्मा में उत्पन्न होकर के भी आत्मा के मैल हैं, विकार हैं, आत्मा को दुख देने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। एक उदाहरण और भी दिया आचार्यों ने इसके लिए कि एक पीपल होता ना, पीपल, तो पीपल के पेड़ में जो लाख पैदा हो जाती है तो वो पीपल उखड़ जाता है, समझ लो उसके दिन खत्म हो गए, तो लाख पैदा हो जाती है। तो कहते पीपल यद्यपि लाख में पैदा, लाख पीपल में पैदा हुई, लेकिन वो पीपल की घातक है इसलिए पीपल नहीं है, क्योंकि जो जिसका घातक होता है वो उसका नहीं माना जाता है। ऐसा समझ लो ना कि अपने शरीर में कैंसर हो जाए तो कैंसर शरीर है क्या? पैदा तो शरीर में ही हुआ है, लेकिन फिर भी वो शरीर का घातक है इसलिए उसे बीमारी मानी जाती है, निकाल देने वाली लायक मानी जाती है, रखने लायक नहीं मानी जाती है। तो ये राग देश मोह के परिणाम आत्मा के कैंसर हैं, ऐसा समझ। ये आत्मा के घातक भाव हैं, आत्मा के सुख और शांति को घात करने वाले भाव हैं, इसलिए इन्हें आत्मा नहीं माना जा सकता। इनको आत्मा कहने वाला जो नय है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वो बात सच्ची नहीं है। अध्यात्म ही कहता है, समय सारे कहता है, सारा जगत तो कहता है कि है। क्या बात करते हो, खोटा बेटा जी, खोटा है तो अपना नहीं रहेगा क्या? क्यों? ये राग अपने में ही पैदा हुआ है, अपने में ही पैदा हुआ है तो क्या अपना नहीं रहेगा? अपना ही है। अज्ञानी तो यही कहता है कि जैसा भी हो वैसा आखिर है तो मेरा ही। क्यों? खोटे बेटे को भी। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, यदि वो लड़का सात व्यसनों में पारंगत हो गया, यदि वो हिंसा करता है, हत्याएं करता है, डांके डालता है, माफिया ग्रोहों में शामिल हो गया, आतंकवादी हो गया, बोलो क्यों? तो आप क्या करते हैं, समझदार लोग तो अखबार में निकाल देते हैं कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये कोई लेन देन करेगा तो इसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। और जब ये घोषणा नहीं करें तो उसे पुलिस परेशान करेगी, गांव वाले परेशान करेंगे, क्यों? सारे लोगों से खतरा है कि नहीं? तो लोक में जो हमारे लिए दुखदायक होता है उसको हम स्वीकार अपना नहीं करते, यद्यपि वो अपना है। तो मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में ही पैदा होते हैं इसलिए सद्भूत हैं, आत्मा को दुख देने वाले हैं दूर के हैं इसलिए उपचरित हैं, उन्हें अपना कहा जाता है दुनिया में इसलिए व्यवहार हैं, और ज्ञान भी ऐसा जानता है कि इन्हें अपना कहा जाता है और मेरे में ही पैदा हुए इसलिए वो नए हैं। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से रागादिक अपने हैं, लेकिन समय सार कहता है कि निश्चय से विचार करें तो वे वास्तव में अपने नहीं हैं, मैं उनसे जुदा तत्व हूं और मेरा चारों प्रकार का संबंध उनसे नहीं है। कौन कौन सा? कि वे मैं नहीं हूं, वे मेरे नहीं हैं, मैं उनका कर्ता नहीं हूं, मैं उनका भोक्ता नहीं हूं, ये मैं नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये जीवा जीवा अधिकार में कहेंगे, और मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये कर्ता कर्म अधिकार में कहेंगे। इस तरह समय सार की मूल प्रतिपाद्य जो वस्तु है वो ये है कि उस भगवान आत्मा को खोज निकालना कि जिस भगवान आत्मा के आश्रय से सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो तीन प्रकार के व्यवहार में की चर्चा अपन ने यहां की, कौन कौन से, कि एक तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहने वाला व्यवहार न, उपचरित असद्भूत व्यवहार न। दूसरा शरीर को अपना कहने वाला व्यवहार न, इसे हम कहते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न। तीसरा राग द्वेष मोह को अपना कहने वाला व्यवहार न, जिसे हम कहते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार न। और समय सार कहता है कि निश्चय न से हम विचार करें, ना तो स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, ना शरीर मेरा है, और ना आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष में हूं मेरे हैं, ना मैं इनका कर्ता भोगता हूं। ऐसा निर्णय करके फिर मैं कौन हूं आखिर, उसकी खोज करके सामने रखना, ये समय सार का काम है। बाकी की बात कल।
Thank you.